ओम शांति। बाबा के अनमोल रत्नों की माला में जग मंगाते बेस कीमती रत्नों में एक रतन। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी हमारे बीच हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। बाल्यकाल से ही आध्यात्मिकता की स्वलहरी में रची बसी। आपने MBBS किया मानव समाज की कर्मठ सेवाओं के लिए। 10 वर्ष ग्लोबल हॉस्पिटल में आपने अपनी सेवाएं भी प्रदान की, लेकिन आपको तन की सेवाओं से ज्यादा मन की सेवाएं अच्छी लगी, तो आपने मुख्यालय में ही अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो अपनी मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी के साथ के भी आपको बहुत अनुभव है। आप महिला विंग की मुख्यालय कोऑर्डिनेटर हैं, BIP की भी आप बहुत अच्छी सेवाएं देती हैं, राजयोग शिविर कराती हैं। आप एक कुशल वक्ता हैं, चेहरा आपका हमेशा मुस्कुराता रहता है। दीदी से जब भी मिलो तो चेहरा मुस्कुराता हुआ ही मिलेगा आपको। तो आज हमारे बीच प्रकाश डालेंगी, जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है, जीना सीखना है, अपने जख्मों को खुद ही सीना सीखना है, हर पल में आनंद है, बस मनसा सेवा करना सीखना है। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय दीदी के मुखारविंद से, आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। हम सब विश्व कल्याणकारी बाप दादा के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। बाबा कहते हैं आपको विश्व का कल्याण करना है, केवल अपने सेंटर का कल्याण या अपने एरिया का कल्याण नहीं करना है। तो ऐसे तो हम एक स्थान पर रहते हैं तो फिर विश्व कल्याणकारी कैसे हो सकते हैं। जो निश्चित है कि विश्व कल्याण करने के लिए हम अपने मन की शक्ति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मन की वो ताकत है कि वो कहीं भी पहुंच सकता है। एक स्थान पर बैठे हुए भी हम दुनिया के किसी भी कोने में अपने वाइब्रेशन फैला सकते हैं। हालांकि मन सूक्ष्म है, हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जितना सूक्ष्म होता है उतना ही वो शक्तिशाली होता है। आज हम देखते हैं साइंस भी जितना सूक्ष्म में जा रही है उतना ही वो शक्तिशाली होती जा रही है। आज देखो एक वायरस आया दुनिया में, कोरोना वायरस, दिखाई तो नहीं देता है ना, लेकिन कितना पावरफुल है। की पावर को पूरी दुनिया ने अनुभव किया कि फिर उसके आगे चाहे कोई कितना भी करोड़पति हो ना, कोई कितना भी ऊंच पद वाला हो, कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो, किसी में उसने कोई अंतर नहीं रखा। तो जितना सूक्ष्म था, जितना सूक्ष्म है वो वायरस, उतना ही ताकतवर। तो मन की शक्ति भी वही शक्ति है कि जितनी सूक्ष्म शक्ति है भले हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन इसका हम प्रयोग करते हैं तो इसके प्रमाण जो है वो इसी प्रकार के होते हैं। तो विज्ञान में हम देखते हैं आज हमारे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल फोन का छोटा सा रूप है। पुराने जमाने में जब मोबाइल होता था या हम कहेंगे फोन होता था, तब तो मोबाइल नहीं थे, फोन होता था, तो एक ही स्थान पर वो रखा होता था, उसे डायल करना पड़ता था और तब बात होती थी। ये भी सुविधा नहीं थी कि घर के किसी दूसरे कोने से हम बात कर पाए। बाद में कॉर्डलेस फोन आए तो ये सुविधा हुई कि आप घर में ही कहीं भी बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद मोबाइल आए। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए आकार छोटा होता गया, तो मोबाइल का आकार छोटा था लेकिन आप कहीं से भी बात कर सकते हैं, केवल घर की बात नहीं, शहर के, देश के, दुनिया के किसी भी कोने से हम बात कर सकते हैं। और उसके बाद स्मार्टफोन आ गए, और स्मार्टफोन आए तो केवल अब वो मोबाइल नहीं था, केवल फोन नहीं था, लेकिन फोन के साथ साथ उसमें और भी क्षमताएं। आज देखो मोबाइल में घड़ी है, टॉर्च है, कैमरा है, रिकॉर्डर है, वीडियो है, ऑडियो है, इंटरनेट हम चलाते हैं उसके अंदर। अब इंटरनेट खोल दिया माना आपको दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब उसमें उपलब्ध है। तो कहने का भाव क्या है कि एक मोबाइल हमारे हाथ में है, माना सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। उसमें टीवी भी चलता है, और तो और आज के समय में उस स्मार्टफोन में टीवी भी चलता है, आप अखबार भी पढ़ सकते हैं, माना सारी दुनिया उसमें। कितनी पावर बढ़ गई, फोन तो छोटा हो गया लेकिन कितना पावरफुल है। तो साइंस की पावर भी, बाबा कहते हैं जब साइंस की पावर इतनी है तो साइलेंस की पावर कितनी होनी चाहिए। और भी हम देखते हैं, देखो पहले ग्रामोफोन होते थे तो एक रिकॉर्ड में एक ही गीत होता था, और आज वो कितना छोटा हो गया है। इस यात्रा को करते करते हम आ गए हैं एसडी कार्ड तक, माइक्रो एसडी कार्ड होते हैं आजकल, है ना, पेनड्राइव तक आए। पेनड्राइव से भी छोटा क्या है, माइक्रो एसडी कार्ड। अब उसकी जितनी क्षमता है, जितना जीबी का है वो, उतना अनलिमिटेड डेटा हम उसमें डाल सकते हैं। है कितना सा, एक चिप, छोटा सा चिप है जैसे, तो कितनी पावर बढ़ गई, जितना सूक्ष्म हो गया उतनी पावर उसकी बढ़ गई। तो हम इससे ये भी समझ सकते हैं जो बाबा कहते हैं कि इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो हो सकता है ना, जब साइंस ये कमाल दिखा सकती है कि इतनी छोटी सी चिप में अनलिमिटेड डेटा हो सकता है, तो आत्मा में भी वो क्षमता हो सकती है कि उसमें 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। जब हम मनसा सेवा करते हैं तो मन की स्थिति हमारी लाइट हाउस माइट हाउस की होनी चाहिए। जितना हमारा मन पावरफुल होगा उतना दूर तक उसका प्रभाव होता है, जिसको हम ऑरा कहते हैं, जो हमारे वाइब्रेशंस फैलते हैं उसको हम ऑरा कहते हैं, आभा मंडल जिसे हम कहते हैं। लेकिन अगर मन कमजोर होगा तो सिर्फ हम तक ही उसका प्रभाव रहेगा, इस हॉल तक भी नहीं जाएगा, या जिस कमरे में हम रहते हैं उस कमरे तक भी नहीं जाएगा। जैसे हम समझें एक 0 वॉट का बल्ब है, वो जलेगा तो कितनी रोशनी होती है, इतनी रोशनी होगी कि हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते उसके अंदर। एक 100 वॉट का बल्ब जलेगा तो हम काम भी कर सकते हैं, 1000 वॉट का बल्ब जला दिया आपने तो एक पूरा मैदान रोशन हो जाएगा उससे। लेकिन लाइट हाउस जो होता है, जो समुद्र के किनारे लाइट हाउस होता है, उसकी रोशनी माइलों तक जाती है, और जो समुद्र में जहाज हैं उनको वो मार्गदर्शन देता है। तो हमारे मन की स्थिति भी लाइट हाउस है तभी हम विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, यानी हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो विश्व के किसी भी कोने में जिन भी आत्माओं तक हम पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचेंगे। तो फिर हमें चेक करना है क्या हमारी मनसा इतनी पावरफुल है। मनसा सेवा शुभ भावना शुभ कामना की सेवा है ना, भाव और भावना की सेवा है दूसरे शब्दों में हम कहें, और शुभ भावना ही पावरफुल होती है। हालांकि नेगेटिव भावनाएं भी पावरफुल होती हैं, लेकिन शुभ भावना का प्रभाव अगर हम बाबा से जुड़े हैं तो वो सहज ही जहां तक हम पहुंचाना चाहें पहुंचा सकते हैं। तो मनसा सेवा की विधि बाबा जो बताते हैं कि हमारे मन में सदा ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो, श्रेष्ठ भावना हो, निस्वार्थ भावना हो, परोपकार की भावना हो, दातापन की भावना हो, और हम स्वयं का परिवर्तन करें। ऐसे नहीं कि दूसरों से आशा रखें कि ये भी बदल जाएं, कुछ ये भी तो करें। इस विधि पूर्वक हम करेंगे तो हमें परिणाम मिलेंगे, नहीं तो कई बार हम देखते हैं कि हम मनसा सेवा तो कर रहे हैं लेकिन जो परिणाम हम चाहते हैं वो परिणाम हमें नहीं मिलते हैं, तो फिर हमें भ्रम होता है। अब होता क्या है कि जो हमारे प्रति स्नेह सहयोग की भावना रखते हैं उनके प्रति हमारी शुभ भावना रहती है, लेकिन जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते, जिनसे हमारा स्वभाव नहीं मिलता, संस्कारों का टकराव होता है, उनके प्रति हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं। वास्तव में मनसा सेवा हम किसकी करते हैं? उन्हीं आत्माओं की करते हैं जिनसे हमारा कोई वैर विरोध है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं विघन रूप है, उन्हीं की हम मनसा सेवा करके उनको परिवर्तन करना चाहते हैं कि वो भी हमारे सहयोगी हो जाएं। लेकिन जब हम योग लगा रहे हैं तब तो उनके प्रति हम शुभ भावना रखते हैं, पर जब व्यवहार में आते हैं, जैसे ही वो आत्मा मेरे सामने आती है मेरी भावनाएं बदल जाती हैं, क्योंकि वो हमारे प्रति नेगेटिव है तो उसकी वृत्ति से मेरी वृत्ति भी बदल जाती है। अगर हम पावरफुल नहीं हैं तो उसका प्रभाव मेरे पर पड़ जाता है, और अगर कभी मेरी भावनाएं पॉजिटिव हैं कभी नेगेटिव हैं तो हमारी मनसा सेवा काम नहीं करती। वो कैसी भी आत्मा है लेकिन हमेशा मेरी उसके प्रति शुभ भावना रहे। जब भी वो हमारे संपर्क में आती है हमारी उनके प्रति वो श्रेष्ठ भावना ही रहे, कल्याण की भावना ही रहे, तब फिर हमें वो परिणाम अवश्य मिलेंगे जो हम मनसा परिणाम चाहते हैं। हमारी मनसा कमजोर क्यों होती है? मनसा शक्तिशाली रहनी चाहिए ना, लेकिन कमजोर होती है क्योंकि जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो कई बार हम छोटी छोटी बातों में बहुत सोचते हैं। हम राई को पहाड़ बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सोचना माना बहुत ज्यादा क्यों क्या हमें जाना, बात तो होती जरा सी लेकिन हमने उसको क्या रूप दे दिया, तो हमारी शक्ति नष्ट होती है क्योंकि हम बहुत सोच रहे हैं उसके बारे में। जितना हम सोचते हैं जितना हम ज्यादा व्यर्थ चिंतन करते हैं, कई बार हम पर चिंतन भी करते हैं, मानो कोई आत्मा निमित्त बनी उस परिस्थिति को लाने के, तो फिर हम उस आत्मा का पर चिंतन भी मन में करते रहते हैं, ऐसा उसने किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा उसने बोला, ऐसा उसको बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो हमने अपनी मनसा को कमजोर किया। फिर नेगेटिव प्रभाव मन पर आते हैं क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन विकारों के वश में कभी ना कभी मन हो जाता है। हाँ, भले ही प्रकट में हमने विकारों को जीत लिया है, मोटे रूप में हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो उसके अंश वंश हैं, अब जैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हमारे ब्राह्मण जीवन का ये फाउंडेशन है, हाँ, लेकिन इसका सूक्ष्म रूप आता है लगाव झुकाव के रूप में, प्रभाव के रूप में। और जहां भी हमारी बुद्धि किसी आत्मा के प्रति गई, जिसको बाबा कहता है एक्स्ट्रा स्नेह में गई, या हम फैमिलियरिटी में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा अपनेपन में आ जाते हैं, तो जितना किसी आत्मा से मेरा बुद्धि योग लगा, उतना बाबा से बुद्धि योग मेरा टूटेगा। तो वो आत्मा का आत्मा के साथ हिसाब किताब बनता है। यानी योग जब हमारा नहीं लग रहा, तो बाबा से जो पावर हमारे में भरनी चाहिए वो पावर हमारी नहीं भरती ना, वो जैसे एक लीकेज हो जाती है। मानो हम बाल्टी में पानी भरते हैं और बाल्टी में छेद है, तो ऊपर से हमने नल खोला, पानी भर रहा है, लेकिन नीचे से छेद से बहता जा रहा है, तो बाल्टी भरेगी क्या? तो यहाँ भी ऐसे ही है कि बाबा से हम योग तो लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोई ना कोई विकार के कारण मन में वो लीकेज है। क्योंकि जब भी मन नेगेटिव संकल्पों में जाता है, मन की शक्ति कई गुना नष्ट हो जाती है। ऐसे ही क्रोध का रूप भी होता है। हम प्रकट में क्रोध नहीं करते, हम किसी को कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मन ही मन क्रोध करेंगे ना। हमें पता है कि मुख से हमें ऐसे वचन नहीं बोलने, तो कोई आपस की बात हो गई तो मुख से तो हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में नाराजगी है उसके प्रति, तो फिर वैसे ही संकल्प हमारे चलेंगे, तो वहां भी हमारे मन की शक्ति नष्ट हो रही है। जहां भी सूक्ष्म मैंपन मेरापन होता है, यानी हम थोड़ा नाम मान शान के उसमें चले जाते हैं, फिर अगर उस अनुसार हमें प्राप्ति नहीं होती है तो भी, तो ये है सब लीकेज जो हमारे मन की शक्ति को कम करते हैं। अब बाबा ने हमें क्या विधि दी है? हमारा मन समर्थ हो, मन लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, उसकी विधि है रोज मुरली सुनना, ज्ञान का मनन चिंतन करना। उससे ही हमें शुद्ध संकल्प मिलते हैं, समर्थ संकल्प मिलते हैं, श्रेष्ठ संकल्प मिलते हैं। तो यदि मन ज्ञान के मनन चिंतन में रहता है जितना अधिक समय, तो हमारे मन की शक्ति बढ़ती जाती है। हाँ, सभी ने अनुभव किया होगा। लेकिन मुरली हम कैसे सुनते हैं? नियम प्रमाण सुन लेते हैं। ज्यादातर मुरली सुनना हमारा नियम प्रमाण होता है कि एक बार हमें मुरली जरूर सुननी है, हम ब्राह्मण हैं, हमारा नियम है। अब मुरली हमने सुनी, आधी सुनी आधी नहीं सुनी, कितना एकाग्रता से हम सुनते हैं वो भी फर्क पड़ता है। अभी देखो कोविड के टाइम में क्या हुआ, सेंटर नहीं आ सकते थे, घर में मुरली सुनते थे। अब घर में मुरली सुनते हैं तो फिर वातावरण तो उतना पावरफुल नहीं होता है, सुनते सुनते कोई काम याद आ गया तो वो भी कर लिया, किसी ने हमसे कोई बात की तो वो उनकी बात भी सुन ली, या कोई मेहमान आ गया तो उसको भी अटेंड कर लिया। तो कितनी मुरली सुनी हमने? नियम तो हो गया हमारा कि हमने मुरली सुनी, लेकिन वो समाई नहीं, सिर्फ हमने नियम निभाया। और जब मुरली समाएगी नहीं तो वो हमारे चिंतन में भी नहीं आएगी, उसका प्रभाव हमारे कर्मों पर दिखाई नहीं देगा। वो जैसे सत्संग हो गया, जैसे भक्ति में लोग सत्संग करते हैं ना, तो एक कन्वर्स होता है, सुनकर खुश होते हैं, हाँ ये बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा बाबा ने सुनाया, बहुत अच्छी मुरली थी आज की, पूछेंगे क्या कहा बाबा ने, क्या कहा बाबा ने, कहा तो बहुत अच्छा था, लेकिन याद नहीं आ रहा क्या कहा बाबा ने। तो क्यों याद नहीं आ रहा? क्योंकि एकाग्रता ही नहीं थी मुरली सुनते समय। तो चलो अब तो सेवा केंद्र खुले हैं, तो फिर हमें सेवा केंद्र पर ही आकर मुरली सुनना है। वो वातावरण हमें मिलता है वहां पर, और सब बातों से हम फ्री होते हैं। पूरी एकाग्रता से बैठ करके हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो जो हमने सुना वो हमारे अंदर समाता है। फिर हमें वो याद भी रहता है कि आज की मुरली में बाबा ने ये कहा। फिर हमें चिंतन, विचार सागर, मंथन जो हमें बाबा कहते हैं वो भी जरूर करना है। यानी समय प्रति समय वो मुरली हमें रिवाइज करनी है। हम दादियों को देखते थे, दादी प्रकाशमणि जी के समीप हम रहे तो हमने देखा दादी चार बार मुरली पढ़ती थी रोज। दादी का नियम था रात को सोने से पहले तो मुरली पढ़ना ही है, फिर सुबह उठते थे तो अमृत वेले के बाद पढ़ना, क्लास में सुनाना, फिर शाम को रेस्ट करके उठते थे तो भी मुरली पढ़ते थे। ओम मंडली के समय से दादी ने मुरली सुनी है और लास्ट तक भी जब तक वो मुरली पढ़ सकते थे, दादी जी का मुरली से इतना प्यार था, तो हम देखते थे वो स्मृति स्वरूप थे। स्वतः ही बाबा की शिक्षाएं उनके जीवन में थी, सर्वगुण संपन्न थे। तो हमें भी रोज मुरली कम से कम, अगर हम चार बार नहीं कर सकते तो दो बार तो हम रिवाइज कर सकते हैं। और आज तो हमारे पास कितने साधन हैं, हमारे हाथ में मुरली होती है, मोबाइल हमारे हाथ में है, माना कोई भी सोशल मीडिया पर आज मुरली होती ही है, जब चाहे हम अपने पॉइंट्स देख सकते हैं। पुराने जमाने में तो ऐसे नहीं होता था, मुरली सेंटर पर ही होती थी, लेकिन आज हरेक के पास है। तो जब भी हमें समय मिलता है, कई भाई बहने कहते नहीं हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम इतना बिजी रहते हैं, बाद में शाम तक हमें याद आता है तब तक तो पूरी मुरली भूल चुकी होती है। मुरली का असर कितना रहता है, मानो हमने सुबह मुरली सुनी दो घंटा उसका असर रहता है। तो हम पूरी तरह से बाबा के श्रीमत अनुसार ना, इतनी पावर आ जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है, तो किसी ने हमसे कुछ कहा भी तो हम बहुत धीरज रखेंगे, बहुत शांति से बात करेंगे, हमें जरा भी गुस्सा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो पावर है। लेकिन अगर हमने मुरली रिवाइज नहीं की तो धीरे धीरे हम जैसे ही कर्म में आते हैं हमारी वो बैटरी फिर से डिस्चार्ज होने लगती है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, और शाम तक आते आते पूरी तरह से देहाभिमान आ जाता है, पुराने संस्कार हमारे इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं, मुरली में बाबा ने क्या कहा था वो तो बिल्कुल विस्मृत, और फिर हम अपने वही पुराने व्यवहार में, पुराने संस्कारों में होते हैं। अगर हमने रिवाइज कर ली बाबा ने क्या कहा तो वही फिर मन में समर्थि आ जाती है, स्मृति से ही मन समर्थ होता है। कोई चीज अगर हमें याद ही नहीं है तो मन कैसे समर्थ होगा, मन कैसे शक्तिशाली बनेगा। तो ये हमें अंडरलाइन करना है कि हम मुरली को जरूर दो या तीन बार चिंतन में लाएं, और अगर नहीं याद आती है तो पढ़ कर के भी हम उसे फिर से रिवाइज करें। कई बार मुख्य मुख्य पॉइंट्स भी केवल हम देख सकते हैं, तो उससे जो भी हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं दिन भर में, जो परिस्थितियां आती हैं, जिस वातावरण में हम जाते हैं, जैसे व्यक्तियों से हम मिलते हैं, वो फिर से हम उसे रिगेन कर लेंगे, अपनी शक्ति को फिर से हम प्राप्त कर लेंगे। फिर जब हम योग में बैठते हैं तो भी एकाग्रता चाहिए। मन के ऊपर एक अच्छी सी कहानी आती है कि एक बार एक राजा था, उसका बेटा नहीं था और उसे अपने वारिस की तलाश थी, तो उसने अपनी प्रजा में ही ऐलान कर दिया कि मैं एक शर्त रखता हूं, जो उस शर्त को पूरी करेगा वो मेरा वारिस होगा। और शर्त ये थी कि राज दरबार से वो बकरी देगा, जो भी युवक आएंगे वो बकरी को उनको घास खिलाकर लाना है और इतना घास खिलाना है कि बकरी जब वापस शाम को राज दरबार में आएगी तो उसके सामने फिर से घास रखा जाएगा और वो घास में मुंह ना लगाए, है ना, इतना उसका पेट भरा हो कि वो घास में मुंह ना लगाए। तो जो भी आए थे सबको बकरी दे दी गई, सब बकरी लेके गए, सबने अपनी तरह से बहुत खिलाया बकरियों को ताकि इतना इनका पेट भर जाए कि दरबार में जाकर के वो फिर से घास में मुंह ना मारे। लेकिन एक जो युवक था उसने क्या किया कि जैसे ही वो बकरी चरने लगती थी उसको लकड़ी मारता था। फिर दोबारा भी जब उसने कोशिश की तो उसने फिर लकड़ी मारी। ऐसे कितनी बार हुआ कि जैसे ही वो घास में मुंह डालने जाती थी उसके मुंह पर वो लकड़ी पड़ती थी जोर से। तो दो चार बार में ही वो बकरी समझ गई कि मैंने घास को मुंह लगाया माना लकड़ी पड़ेगी। तो डर के कारण, क्योंकि वो आसपास ही था, तो डर के कारण उसने घास में मुंह डालना ही छोड़ दिया। तो पूरे दिन वो बकरी भूखी रही, उसने घास में मुंह नहीं डाला क्योंकि उसके सामने ही वो लकड़ी थी। सब वापस शाम को आए दरबार में और सभी बकरियों के सामने घास रख दी गई, तो क्या हुआ होगा, जिन्होंने सारे दिन बकरियों को बहुत चराया उन बकरियों ने जैसे ही घास देखा तुरंत घास पे टूट पड़ी फिर। लेकिन वो बकरी जो डंडा खा रही थी सारा दिन, उसने देखा अभी भी डंडा है सामने, क्योंकि वो युवक जो है डंडा लेकर ही खड़ा था। तो डंडे को सामने देखा तो अब उसने अभी भी घास में मुंह नहीं डाला, डंडे को ही देख रही थी वो। और जब घास में मुंह नहीं डाला तो वो शर्त जीत गया और राजा ने उसको ही अपना वारिस घोषित कर दिया, है ना। तो ये हमारे मन का स्वभाव है कि जितनी हम उसकी इच्छाएं पूरी करते जाते हैं वो कभी भी कम नहीं होती और ही बढ़ती जाती हैं। लेकिन उसने क्या किया, कंट्रोल किया, डंडा लगाना मतलब उसने उसको कंट्रोल किया। और जब वो कंट्रोल हो गया तो फिर कितनी भी हरी भरी घास उसके सामने आई फिर भी उसने उस घास में मुंह नहीं डाला। तो हमारा मन भी ऐसा ही काम करता रहता है कि जब तक हम इसे श्रीमत का डंडा नहीं लगाते रहते, बाबा ने हमें श्रीमत दी है ना, तो जब तक वो डंडा मन को नहीं लगता रहता तब तक ये मन कंट्रोल में नहीं रहता है। मन जो है, जैसे बताया कि छोटी छोटी बातों में जाना, परिस्थितियों में उलझे रहना, इस तरह से इच्छाओं में चले जाना, कोई भी आकर्षण मन को आकर्षित कर लेता है। आजकल तो हमारी एनर्जी को कम करने वाले जो मोबाइल हैं, स्मार्टफोन अगर जिसके हाथ में है वो एक बार उसने देखना शुरू किया तो कब घंटा बीत गया, दो घंटा बीत गया, पता ही नहीं चलता। वैसे कहेंगे समय नहीं मिलता, और वैसे अगर व्हाट्सएप पे चले गए, फेसबुक पे चले गए तो घंटे दो घंटे कहाँ चले गए मालूम ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा मन को, हमारी एकाग्रता बने, हमारी कंट्रोलिंग पावर हो, मन पर रूलिंग पावर हो, उसके लिए हमें श्रीमत मन को देते रहना है, माना कंट्रोल में रखना है हमें अपने मन को। तब हमारे मन की शक्तियों को हम लाइट हाउस के रूप में अनुभव कर पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं वो शक्तियां डिस्चार्ज, माना बैटरी डिस्चार्ज होती ही रहती है। एकाग्रता के लिए बाबा कहते हैं कि एक शुद्ध संकल्प में हमारा मन स्थित हो जाए। बाबा ने हमें बहुत से शुद्ध संकल्प दिए हैं, जो भी स्वमान के संकल्प हैं वो सब शुद्ध संकल्प हैं, या जो हमारी योग की स्थितियां हैं, फरिश्ता स्थिति है, फरिश्ता स्थिति में हम जितना समय मन को लगाना चाहें, जब लगाना चाहें, वो अव्यक्त स्थिति हमारी बन जाए। बीज रूप स्थिति में हम मन को स्थित करना चाहें, बीज रूप स्थिति में हमारा मन परम धाम में बाबा के साथ लगन में मगन हो जाए, या बाबा के साथ हम रू रिहान करते हैं तो एक बाप दूसरा ना कोई ये अनुभूति हमारी हो, इसको बाबा एकांत भी कहता है, यानी एक के अंत में खो जाना। तो जब ये मन की ये स्थिति होती है तब वो ज्वालामुखी योग है जिसे हम योग अग्नि कहते हैं। और ऐसे योग के बाद हम जो शुद्ध संकल्प करते हैं, चाहे वो किसी आत्मा के प्रति करते हैं, मानो हमें जिसकी मनसा सेवा करनी है, चाहे हम विश्व की आत्माओं के प्रति करते हैं, चाहे हम वायुमंडल बनाने के प्रति करते हैं, वो हमारा सफल होता है, सिद्ध होता है। जिसको बाबा कहता है विधि से हमें सिद्धि मिलती है। अगर विधि पूर्वक नहीं हम कर रहे तो फिर हमें वो सिद्धि का भी अनुभव नहीं होगा। तो एकाग्रता के प्रमाण तो आज की दुनिया में भी मिलते हैं। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनी मानसिक क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं, और वो किसके आधार पर? मानसिक एकाग्रता के आधार पर। मुझे याद है दारी जानकी जी लंदन में सेवा पर थे जब, तो वहां एक साइकोलॉजिस्ट आया था, यूरी गैलर नाम था उसका, जो पुराने भाई बहने होंगे वो जानते होंगे। तो उसकी ये मानसिक क्षमता थी कि अगर उसने अपने मन को घड़ी पर एकाग्र कर दिया और ये संकल्प किया कि घड़ी बंद हो जाए तो घड़ी बंद हो जाएगी, फिर अगर संकल्प किया घड़ी चालू हो जाए तो घड़ी चालू हो जाएगी, अगर किसी ने कार की चाबी दे दी उसको और उसने कार की चाबी को देखते देखते ये संकल्प कर लिया कि चाबी मुड़ जाए तो चाबी मुड़ जाएगी, फिर चाबी को सीधी भी कर देता था, वो संकल्प से ही चाबी सीधी भी हो जाती थी। और जो हम मूंग वगैरह अंकुरित करते हैं, जो दो दिन में जाकर अंकुरित होते हैं, वो हथेली पर रखकर कुछ मिनटों में ही मूंग अंकुरित कर देता था। तो जब वो अपने वहां लंदन के सेंटर पर आया और उसने ये सारा है ना भाई बहनों के सामने प्रदर्शन किया, तो उसका एक प्रोग्राम रखा लंदन में, एक बड़ा हॉल बुक किया गया, अल्बर्ट हॉल नाम था उसका, वहां पर उसका प्रोग्राम रखा गया दारी जी के साथ, और पूरा हॉल फुल था और उसने ये सारा अपना करके दिखाया, जो भी घड़ी बंद करना, चाबी मोड़ना, अंकुरित करना। और फिर जब ये सब कर लिया उसने, उसके बाद दादी जी ने राजयोग का अभ्यास कराया पूरी सभा को, क्योंकि पब्लिक थी, बाहर की पब्लिक थी उस हॉल में। तो उस राजयोग अभ्यास के समय पूरे हॉल में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था और सबको शांति का अनुभव हुआ। और वो जो भाई था जो दादी जी के साथ ये कार्यक्रम कर रहा था, जो साइकोलॉजिस्ट भाई था, उसने भी उस शांति का अनुभव किया। तो उसने फिर प्रोग्राम के बाद दादी को कहा कि दादी जी, ये सब कुछ जो मैंने दिखाया ये तो सबको थोड़े समय की खुशी देने वाला है, लेकिन जो शांति का अनुभव आपने कराया वो दुनिया को आज शांति चाहिए, और ये शांति का अनुभव तो मैं नहीं करा सकता हूं। तो मैं मानता हूं कि आपकी पावर मेरे से ज्यादा है। तो सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी हुई? साइलेंस पावर की हुई ना। और बाबा हमें कहता है कि साइलेंस पावर तो बहुत कमाल करने वाली है। अगर हम इस साइलेंस पावर को सही समय पर यूज करते हैं तो हम ऐसे ऐसे ना चमत्कारिक उसके परिणाम हम अनुभव कर सकते हैं। वो बाबा ने हमें मूल्यों में बहुत बताए हैं कि साइलेंस पावर के हमें प्रमाण कैसे मिलने वाले हैं। ऐसे ही हम साइंटिस्ट को देखते हैं, आज देखो कोविड की वैक्सीन बनी, एक साल के अंदर अंदर साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई, जो वैक्सीन पहले सालों लगते थे बनने में, और वो वैक्सीन एक साल के अंदर तैयार करके दुनिया में लाना, कितनी एकाग्रता से काम किया होगा हम समझ सकते हैं। क्योंकि बीमारी इतनी खतरनाक है ना कि लोग जो हैं वो मर रहे हैं और इतनी अधिक संख्या में मर रहे हैं, तो सारी दुनिया पर उसका ये तो इतना बुरा प्रभाव है, उससे हम कितना जल्दी से जल्दी दुनिया को निकालें। इस भाव से उन्होंने वो सारा कार्य किया और दुनिया को वैक्सीन मिली, सारी दुनिया में वैक्सीन आई और उसका परिणाम भी हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस अब काफी कम हो गए हैं अभी भी, लेकिन फिर भी क्योंकि सभी को वैक्सीन लगी भी नहीं है, अभी लग रही है और उसमें भी अभी थोड़ा समय लगना है। तो जहां भी व्यक्ति एकाग्रता से कार्य करता है वो अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। ऐसे ही हम शास्त्रों में सुनते हैं कि अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाया, स्वयंवर के समय पर मछली की आंख पर निशाना लगाना था और आंख के भी बिंदु पर निशाना लगाना था, तो उसको क्या दिखाई दे रहा था? सिर्फ आंख, और आंख में भी सिर्फ बिंदु से मछली दिखाई नहीं दे रही थी, इतनी एकाग्रता कि सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए भी एकाग्रता का अर्थ क्या है? हमारी भी साइलेंस पावर कब जनरेट होती है? जब पूरी तरह से बाबा जो हमारा लक्ष्य है, बाबा बिंदु रूप है, परम ज्योति है, उस परम ज्योति पर ही मेरा मन लंबे समय तक एकाग्र हो जाए, हिले नहीं हमारा मन, तब फिर जो सिद्धि हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त होती है। नहीं तो होता क्या है, हम एक सेकंड के लिए परम धाम जाएंगे और दूसरे सेकंड फिर नीचे आ गए, कोई ना कोई बात ने खींच लिया, फिर हम सोचेंगे हम तो योग कर रहे हैं अभी, फिर बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, फिर परम धाम में अपनी स्थिति बनाते हैं, फिर थोड़े मिनट में कोई बात हमें फिर नीचे खींच लाती है। तो इस तरह से जब हम योग करते हैं, बाबा कहते हैं ड्रिल जरूर करो, लेकिन इसको हम एकाग्रता नहीं कहेंगे। दुनिया में भी शारीरिक ड्रिल करते हैं तो वो शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, यहाँ बाबा हमें रूहानी ड्रिल करने के लिए कहते हैं। रूहानी ड्रिल का मतलब है कि कभी हम निराकारी स्थिति में मन को स्थित कर लें, कभी हम आकारी स्थिति में मन को स्थित कर लें, और कभी कर्मेंद्रियों के द्वारा हम साकार में कर्म कर रहे हैं। तो जो तीनों लोकों की हमारी यात्रा है, जिसे बाबा याद की यात्रा कहते हैं, रूहानी यात्रा कहते हैं, वो तीनों लोकों की यात्रा समय प्रति समय हमारी चलती रहे। जो ब्रह्मा बाबा करते थे, ब्रह्मा बाबा ने ये बहुत अभ्यास किया, सुनते हैं बाबा कैसे अशरीरी स्थिति का अभ्यास बीच बीच में करते थे, और जो भी बच्चे मिलते थे वो अनुभव करते थे बाबा से मिल करके कि बाबा से मिलते हैं, बाबा की दृष्टि मिलती है, हम भी अशरीरी हो जाते हैं। यानी एक सेकंड में अगर बाबा इस देह से न्यारा होना चाहते थे तो सेकंड में बाबा देह से न्यारे हो जाते थे। तो हमारा भी ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो जो अशरीरी स्थिति का अनुभव है, वो अशरीरी स्थिति का अनुभव मन को लाइट हाउस बना देता है, उसमें बहुत पावर है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर हम 5 मिनट के लिए अशरीरी हो जाते हैं तो 4 घंटे की नींद की ताकत वो मन को मिल जाती है, इतना अशरीरी स्थिति हमारी पावरफुल है जब हम परम धाम में बाबा के साथ अशरीरी स्थिति में होते हैं। या इस शरीर में रहते हुए भी हम विदेही अनुभव कर सकते हैं कि मैं आत्मा बिल्कुल अलग और मेरी कर्मेंद्रियां अलग है, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूं। जब हम मनसा सेवा करते हैं तो हम एक स्थान पर बैठे हुए विश्व की किसी भी आत्मा को सकाश दे सकते हैं। अब कब सकाश की जरूरत होती है? जब कोई आत्मा कमजोर है, कोई निराश है, कोई दुखी है, उदास है, अशांत है, ऐसी आत्माओं को जब हम सकाश देते हैं तो उन्हें अनुभव होता है कि मुझे कोई अदृश्य शक्तियों के द्वारा प्राप्ति हो रही है, मुझे वो सहयोग मिल रहा है। बाबा कहते हैं जैसे साइंस की पावर है कि दूर के दृश्यों को भी वो सम्मुख अनुभव कराते हैं ना। आज टेलीविजन में हम क्या देखते हैं, कोई दूर बात कर रहे हैं और हमें स्क्रीन पर ऐसे लगता है जैसे कि हमारे बिल्कुल सम्मुख ही बात कर रहे हैं ना। जैसे टेलीफोन में भी हम सुनते हैं बात, हम कहाँ कर रहे होते हैं, लगता है ऐसे है कि यहीं बात कर रहे हैं। तो दूर को समीप अनुभव कराने की पावर ये साइंस में है ना। तो ऐसे ही मनसा शक्ति के द्वारा भी वो आत्माएं ऐसे अनुभव करेंगी, बहुत समीप अनुभव करेंगी। हम उनको बाबा के समीप ला सकते हैं, हम उनको भाग्य बनाने की प्रेरणा दे सकते हैं, हम उन आत्माओं के संस्कार परिवर्तन भी कर सकते हैं, जिसको बाबा कहते हैं वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन करना। अगर उनकी वृत्ति का परिवर्तन होता है तो वही उनके संस्कारों का भी परिवर्तन होता है। यहाँ तक कि हम स्वास्थ्य में भी सहयोग दे सकते हैं, कोई अस्वस्थ है और ये हम सेवा करते ही हैं समय प्रति समय, अपने प्रति भी हम कर सकते हैं, हमको भी कोई रोग है उसके प्रति भी हम मनसा सेवा करके अपने आप को भी स्वस्थ कर सकते हैं और दूसरी आत्माओं के प्रति भी हम वो सहयोग कर सकते हैं। तो हम जैसे हमारे कोई वरिष्ठ बीमार होते हैं तो कहते हैं ना कि योग लगाना है, तो योग लगाएंगे माना जो हम वाइब्रेशन दे रहे हैं वो उस आत्मा को सहयोग देते हैं बीमारी के समय, तो उनको मदद मिलती है, वो जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। अपने प्रति जैसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रोग्रेस, ये डिजीज इसके बारे में सुना होगा आपने, अपने यहाँ एक प्रोग्राम चलता है हार्ट के पेशेंट्स का ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एग्रेशन प्रोग्राम बोलते हैं उसको, तो उसमें उनको लाइफस्टाइल चेंज करना सिखाते हैं और साथ में ये भी सिखाते हैं कि कैसे योग के द्वारा जो हार्ट के ब्लॉकेजेस हैं बाबा से वो पावर लेकर के हृदय के लिए हमें प्रेम की शक्ति या प्रेम के गुण की आवश्यकता होती है। तो बाबा तो प्यार का सागर है और वो प्यार की एनर्जी लेकर के हम अपने हार्ट पर वो सकाश देते हैं और जब वो कुछ समय तक बीमारी आने में भी समय लगता है तो बीमारी जाने में भी समय लगता है, तो मानो कुछ महीनों तक जब वो प्रयोग करते रहते हैं तो ये देखने में आया कि जो हार्ट पेशेंट्स जिनके 100% तक भी ब्लॉकेजेस थे वो बिना बाईपास सर्जरी के खुल गए। इतने मरीजों के 25 साल से ये कैंप जो है वो यहाँ चलते हैं और कितने हजारों मरीजों ने इसका लाभ लिया है। तो इसका मतलब वो प्रमाण हमें मिलता है ना कि हम अपनी बीमारी पर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दवाई बंद कर दें। दवाई बंद करने के लिए बाबा नहीं कहता है, योग हमें मदद करता है, लेकिन ये तमो प्रधान तत्वों का बना हुआ शरीर है तो फिर अगर बीमारी आ गई है तो हमें दवाई की भी आवश्यकता होती है, लेकिन दवाई के साथ साथ अगर योग का प्रयोग होता है तो हम जल्दी स्वस्थ होते हैं और पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, यानी बीमारी जड़ से समाप्त होती है। नहीं तो होता ये है कि दवाइयां खाते रहते हैं बीमारी भी चलती रहती है ना। आज बीमारियां सिर्फ कंट्रोल होती हैं, एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं वो क्या होता है, जब तक दवाई खा रहे हैं तब तक ठीक है, दवाई खाना बंद फिर बीमारी वापस लौट जाती है। दूसरों के प्रति भी हमने बहुत प्रयोग किए हुए हैं क्योंकि हम हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में कई बार ऐसे सीरियस मरीज आ जाते हैं, तो हमें पता है कि बाबा ने हमें ये मनसा पावर दी है और अगर हम किसी आत्मा को सहयोग देना चाहते हैं तो हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा जिन भी मरीजों के लिए हमने इस तरह के प्रयोग किए 90% वो सफल हुए। अब बाकी तो कुछ आत्मा का अपना हिसाब किताब भी तो होता है ना, तो वो हिसाब किताब जो होते हैं उसके कारण वो सामने आता है, लेकिन हमने देखा कि उसमें सफलता मिलती है। अभी रिसेंटली एक जो कोविड की दूसरी लहर आई उसके बाद एक माता ने हमको फोन किया, उसने कहा कि दीदी मेरा जो दामाद है वो बहुत सीरियस है, आईसीयू में है और उसका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो फ्लक्चुएट हो रहा है और डॉक्टर दवाइयां तो दे रहे हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। 3-4 दिन हो गए और डॉक्टरों को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि बीमारी क्या है, क्योंकि कोरोना नहीं है, कोरोना नेगेटिव आ गया है। उन्होंने 2-3 बार टेस्ट कर लिया होगा लेकिन कोरोना जो है वो नेगेटिव आ रहा था रिपोर्ट में। तो उनके उनके शहर के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि हम नहीं समझ पा रहे और हम यहाँ इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। और यंग था, मतलब भाई जो था ज्यादा उम्र नहीं थी उसको, तो बोला कि इसको बॉम्बे ले जाओ, यहाँ इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसको बॉम्बे ले जाओ। अब बॉम्बे ले जाना उस शहर से बहुत दूर, सफर करना भी इतना आसान नहीं बीमारी में, हालांकि वो वेंटिलेटर पे नहीं था सिर्फ ऑक्सीजन पर था। तो फिर भी उन्होंने कि हाँ इनकी जान बच जाए किसी तरह से, वो मेरे को जानती थी तो उसने मुझे फोन किया, उसने कहा कि दीदी ऐसी ऐसी बात है तो आप बाबा से योग लगाओ। ऐसे हम कहते हैं ना कि हाँ योग का सहयोग, उनके सेंटर पर भी उन्होंने योग रखवाया उनके निमित्त और मुझे भी यहाँ मधुबन में बोला कि उनके निमित्त है ना योग करना है। तो मैंने उसको पूरा सांत्वना दी और मैंने कहा जरूर हम योग करेंगे और मैंने खास उनके निमित्त योग किया भी सही बैठ करके। 2-3 दिन लगातार मैंने 1-1 घंटा निकाल करके मैंने योग किया, पर उनको बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा। उसे वो बॉम्बे में ले गए बड़े हॉस्पिटल में और वो भी एयर एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा, प्लेन से ले जाना पड़ा, मतलब प्लेन की जो एम्बुलेंस होती है। वहां बॉम्बे में डॉक्टरों ने उनके इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। तो देखो योग से कैसे सहयोग मिलता है ना, ऐसे इलाज तो करना ही है। वहां पर उनकी बीमारी पकड़ में आ गई कि उनको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, थी तो लंग्स की ही प्रॉब्लम ना, लंग्स जो है वो उनका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो डाउन हो रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा था, थोड़ा बुखार भी था, बुखार भी नहीं उतर रहा था। तो वहां बीमारी का पता चला डॉक्टरों को और फिर उस अनुसार उन्होंने उनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया। तो वहां 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिकवरी हो गई, वो स्वस्थ हो गए और उसके बाद उनको थोड़े समय के बाद वापस घर भी लेकर आ गए और वो ठीक हो गए। तो वो क्रिटिकल पीरियड जो था ना, माना जब इधर या उधर आर या पार वाली स्थिति होती है, क्रिटिकल पीरियड उसको कहते हैं लाइफ का, उस समय उस आत्मा को सहयोग मिल जाता है तो फिर उसके अंदर वो पावर आ जाती है कि वो उससे पार हो जाए। जैसे कोई मानो सुसाइड करने जा रहा है तो वो ही कोई मोमेंट्स होते हैं जब उसका दिमाग एकदम ऐसा खराब होता है कि वो अपने आप को समाप्त करता है, लेकिन अगर वो पीरियड क्रॉस हो जाए किसी तरह से पार हो जाए तो फिर वो कभी भी विचार उसको दोबारा नहीं आएगा। तो ऐसे हम सहयोग करते हैं आत्माओं को। तो बाबा कहता है मनसा सेवा वो सेवा है जो हम कभी भी कर सकते हैं, इसमें हमें कोई चांस की प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे चांस मिलेगा तब हम ये सेवा करेंगे। अब कर्मणा सेवा है, चांस मिलेगा तब करेंगे, वाचा सेवा है, चांस मिलेगा तब करेंगे, लेकिन मनसा सेवा तो हमारे अपने अधिकार में है, बस हमारा मन पावरफुल होना चाहिए। फिर मनसा सेवा हम बीमार हैं तो भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि भाई मैं बीमार हूं तो अभी मैं कैसे काम करूं। अगर हमारा मन स्वस्थ है, मन पर बीमारी का प्रभाव नहीं है, तो हम बिस्तर पर हैं, लेटे हुए हैं तो भी हम मनसा सेवा कर सकते हैं। और मनसा सेवा में कोई विघ्न भी नहीं आता है, जो दूसरी सेवाओं में तेरे मेरे का विघ्न आ जाता है, नाम मान शान का भी विघ्न आ जाता है कभी, मेरे को पूछा नहीं, मेरा नाम नहीं लिया, मुझे कहा नहीं, मैं इतनी हमने इतनी सेवा की, और मनसा सेवा में ये विघ्न भी नहीं आते। प्रकृति की हमें सेवा करनी है तो वो हम मनसा से ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति को हम ज्ञान तो नहीं सुनाएंगे, प्रकृति को भी हमें पावन बनाना है, सतो प्रधान बनाना है, तो मनसा वाइब्रेशंस के द्वारा ही हम प्रकृति को सतो प्रधान बनाएंगे। और बाबा कहता है कि वृत्ति के द्वारा हम अपने स्थान के वायुमंडल को, जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा घर आश्रम लगे, कोई भी आए उसको महसूस हो कितना शांति है इस घर में, पवित्रता महसूस होती है। जैसे हम मधुवन में आते हैं तो मधुवन में प्रवेश होते ही हम महसूस करते हैं कि दुनिया के वायुमंडल में और मधुवन के वायुमंडल में अंतर है या नहीं है। तो हमारे घर का भी वायुमंडल ऐसा हो, जो कोई भी हमारे घर में आए वो महसूस करे कि इनके घर में आते ही जैसे मन शांत हो जाता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप हमें शांति का अनुभव होता है। तो वो हम अपने घर के वायुमंडल को भी मनसा से पावरफुल बना सकते हैं, अपने सेंटर के वायुमंडल को भी हमें पावरफुल बनाना है। और बाबा कहता है अंत समय की सेवा यही है, अंत में सब सेवाएं बंद हो जाएंगी, स्थूल साधन ही काम नहीं करेंगे। तो ये हमारा वायरलेस सेट जो है, मन का सेट वायरलेस सेट है ना, ये कब काम करेगा, जब ये वॉइसलेस होगा। वॉइसलेस माना बिल्कुल निर्विकारी स्थिति हमारी होगी, संपूर्ण पवित्र स्थिति हमारी होगी, तो हम बाबा की कैचिंग और टचिंग्स को ग्रहण कर पाएंगे और उस अनुसार जिस आत्मा को जो प्राप्ति हमसे चाहिए वो शक्ति का अनुभव हम करा पाएंगे, प्राप्ति का अनुभव हम करा पाएंगे। तो जैसे वो साइंस के साधन काम करते हैं, हमने वो कनेक्शन किया और बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो वो हमें दृश्य दिखाई देने लगता है, आवाज सुनाई देने लगती है। तो ऐसे ही कनेक्शन हमने बाबा से किया, बाबा से कनेक्शन किया और स्मृति का स्विच ऑन किया। बाबा हमारा पावर हाउस है ना, तो हमारी मनसा शक्ति कार्य करना प्रारंभ कर देती है। और बेस्ट समय है मनसा सेवा करने का अमृत वेले का समय। अमृत वेले हम जिन आत्माओं के प्रति सेवा करना चाहते हैं, जिन्हें बाबा का संदेश पहुंचाना चाहते हैं, उस आत्मा को हम सहज इमर्ज कर सकते हैं, क्योंकि उस समय प्रकृति का भी हमें सहयोग है, क्योंकि प्रकृति साइलेंस में है उस समय। आत्माओं का तमोगुण दबा हुआ होता है क्योंकि सभी सोए हुए होते हैं, तो हमारी जो सकाश है वो सहज पहुंचती है। तो हमें अमृत वेले विशेष पूरा, जैसे हमने योग कर लिया, योग के बाद लास्ट 5 या 10 मिनट पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश देनी है, जो बाबा से हमने शक्तियां ली, जो वरदान हमने अनुभव किए हम विश्व की आत्माओं के प्रति दें। और कोई विशेष आत्मा के प्रति मुझे सेवा करनी है तो उस विशेष आत्मा को हम इमर्ज करें, बाबा के सामने हम इमर्ज करें। और जैसे अपने सूक्ष्म शरीर में फरिश्ता रूप में बाबा से मैं शक्ति ले रही हूँ, और उस आत्मा को जो हम चाहते हैं, जो हम परिवर्तन चाहते हैं या जो संदेश देना चाहते हैं, उस आत्मा को हम वो बात कहें, तो बाबा मेरे द्वारा उसे ये संदेश दे रहे हैं, और इस तरह से वो उस भाव को वो आत्मा ग्रहण कर लेगी और उससे उसकी वृत्ति का परिवर्तन होगा। होता है ऐसे, बहुत अनुभव करते हैं बाबा के बच्चे, जब हम सही विधि से मनसा सेवा करते हैं तो हम आत्माओं में वो परिवर्तन देखते हैं। ऐसे कई विरोधी आत्माएं जो रही वो भी बाद में धीरे धीरे मनसा सेवा से ज्ञान में आ गए, और वो कारण था उसके पीछे कि उनकी वो पावरफुल मनसा सेवा हुई, उससे उनकी वृत्ति का परिवर्तन हुआ और बाद में वो बाबा के बच्चे भी बने, और इतने अच्छे बच्चे बने कि फिर वो जैसे निर्विघ्न बाबा के ज्ञान में चले। पर ये नहीं कि हम बाबा को एप्लीकेशन लगाना शुरू कर दें, हाँ कि बाबा मेरे पति ज्ञान में नहीं चलते, इनकी बुद्धि का ताला खोल दो, हाँ मेरा बेटा ज्ञान में नहीं चलता, या जो भी ज्यादातर हमारे जो समीप वाले होते हैं उनके लिए ही हम ऐसा सोचते हैं। नहीं, हमें समस्त विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है और उन आत्माओं में वो भी शामिल हैं। तो हम विशेष बस सकाश दें और जैसे ही ड्रामा में उनका पार्ट होगा वो आत्माएं अपने आप बाबा के पास आएंगे। ब्रह्मा बाबा को हम देखते थे कि बाबा कैसे बच्चों के प्रति मनसा सकाश देते थे। उस समय इतने साधन भी नहीं थे जितने आज साधन हैं। मेरे को एक बहन का मिसाल याद आता है, बाबा के समय का पार्टी आई थी बाबा से मिलने के लिए और आने के बाद वो बहन को बुखार हो गया और काफी तेज बुखार हो गया और उस समय डॉक्टर नहीं थे, यहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं था, मधुबन में तो ना कोई मेडिकल सुविधा थी ही नहीं, छोटी मोटी जो दवाइयाँ होती हैं घरेलू दवाइयाँ इस तरह से आपस में इलाज कर लेते थे। तो उनको वो दवाई वगैरह दी पर उससे बुखार नहीं उतरा और रात को पूरा इतना तेज बुखार, बाबा को बताया क्योंकि कोई भी ऐसा केस होता था तो बाबा को ध्यान पर देते थे कि बाबा ऐसे ऐसे है, तो बाबा को बताया आकर कि बाबा बहन का बुखार नहीं उतर रहा है, बहुत तेज बुखार है, तो अगर सुबह तक ये बुखार चला तो क्या करेंगे। फिर बाबा ने उनको निश्चिंत किया, बाबा ने कहा कोई बात नहीं आप जाओ और ठंडे पानी की पट्टी जैसे रखते हैं वो तो रखो और बाबा बच्ची के लिए योग लगाएगा वो ठीक हो जाएगी सुबह तक। और बाबा ने सारी रात उनके लिए योग किया वो बहन के लिए और सुबह तक उसका बुखार बिल्कुल नॉर्मल फिर दोबारा चढ़ाई नहीं तो ठीक हो गए। तो ऐसे मनसा जैसे कहा है सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली है और हमारी ये अंतिम समय की सेवा है जिसके लिए हमें अभी से अपने मन को तैयार करना है, अभी से अपने मन की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को हमें बढ़ाना है, हम फुल स्टॉप दे सकें, जब चाहें अपने मन को फुल स्टॉप दे सकें, ये अभ्यास हम अभी से अपने मन को देंगे तब अंत समय में जब हमें आवश्यकता होगी हमारा मन उतनी पावर से हमें मदद करेगा और हम उसमें सफल हो पाएंगे। ओम शांति।